HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्थानों के भी अपने भाग्य होते हैं, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ ऐसे ही एक महाभाग्यवान स्थान पर, जो सतयुग से आज तक पूजा जाता है। यहाँ ज्योति रूप भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित रूप से स्थित हैं, और इसी प्रांगण में स्थित है श्री शैलम शक्तिपीठ। तो आइए आज चलते हैं आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर, जिसे दक्षिण का कैलाश भी मानते हैं, और यहाँ कृष्णा नदी के तट पर स्थित है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव पार्वती दोनों स्थापित हैं। आज भी यहाँ हर रोज उनका विवाह कराया जाता है। मल्लिका माँ पार्वती हैं और अर्जुन भगवान शिव को कहते हैं। इसी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में ही स्थित है श्री शैलम शक्तिपीठ, जहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन का निपात हुआ था।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
यहाँ की शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव सर्वानंद या ईश्वरानंद हैं। इसी स्थान पर माँ ने भ्रामरी रूप धारण किया था, इसीलिए इस शक्ति को भ्रमर अंबिका शक्तिपीठ भी कहा जाता है। अनेक भक्त इन्हें माता का शाकुंभरी रूप भी मानते हैं, इसलिए यहाँ माता को शाक सब्जियों कंदमूलों की मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जब देवी सभी देवताओं को वरदान देती हैं और बताती हैं कि वो आगे किन किन रूपों में प्रकट होंगी, उसमें 42 और 43 श्लोक में वो अपने श्रीमुख से कहती हैं, जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री शैल शक्तिपीठ ही वह स्थान है जहाँ पर देवी माँ ने अरुणासुर नामक दैत्य का मर्दन किया और भ्रामरी रूप धारण किया। दुनिया जिसे माइथोलॉजी कहती है, हमारे पवित्र ग्रंथ और हमारे सिद्ध और शक्तिपीठ इसे दिव्य इतिहास के रूप में प्रमाणित करते हैं और उसके साक्षी बन जाते हैं। देवी सती की गर्दन का निपात होने से सतयुग में यह स्थान स्थापित हुआ। उसके बाद भगवान कार्तिकेय इस स्थान पर आए और फिर यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इसकी कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर कालांतर में नंदी बाबा ने भी यहाँ तपस्या की। ऋषि भृंगी का भ्रम भी यहीं दूर हुआ और उन्हें तीसरा पैर प्राप्त हुआ, और उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण और सीता यहाँ रहे। कुछ तथ्यों के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ से रावण ने सीता माता का हरण किया। फिर पांडव भी अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर रहे। अद्भुत बात यह है कि इस स्थान पर कभी भी कोई आक्रमण नहीं कर पाया और ना ही कोई इसे क्षति पहुंचा पाया। आइए अब मैं आपको इस स्थान से जुड़ी माता के भ्रामरी रूप की सुंदर कथा सुनाती हूँ। अरुणासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। वो अपनी माता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी माता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसके पिता के कारण ही उसकी माता की मृत्यु हुई। अरुणासुर की माता बहुत ही साध्वी स्त्री थी, परंतु उसके पिता बहुत क्रूर थे। माता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने अपने पिता का वध कर दिया। अपनी माता के शरीर को उसने प्रिजर्व करके रखा, इसी मंशा से कि एक दिन वो उन्हें पुनः जीवित करेगा। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो अरुणासुर ने वरदान मांगा कि कोई भी दो पैर वाला या चार पैर वाला प्राणी उसे नहीं मार पाएगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया। उसे लगा कि इस वरदान से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अमरता सुनिश्चित हो गई है। उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उन्हें हराया और उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया। तभी पंच तत्वों को उसने अपने अधीन कर अपनी माता को जीवित करने को कहा, परंतु देवता बोले कि बिना प्रकृति की इच्छा के वे भी किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। फिर उसने माँ पार्वती की आराधना की, माँ ने उसको दर्शन दिए और उसकी माता की आत्मा से मिलवाया। उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे इस मातृ मोह के कारण मैं अब तक मोक्ष नहीं पा सकी, क्योंकि तुमने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया है, तुम एक अच्छे पुत्र नहीं हो। इसके बाद देवी माँ ने उस शरीर को पंचभूतों में मिला दिया और अरुणासुर की माता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पर अरुणासुर अपनी मूढ़ता के कारण इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और माता से ही युद्ध करने को आतुर हो गया। तब माता ने भ्रामरी रूप धारण किया, फिर उन्होंने अरुणासुर से युद्ध करके उसे मृत्यु प्रदान की। इसके बाद देवताओं के अनुग्रह पर माँ अपने इसी शक्ति पीठ में समा गईं और सबके कल्याण के लिए वो यहीं स्थित हो गई। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार देवताओं में प्रथम पूज्य कौन होगा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा देवताओं में वही प्रथम पूज्य होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वो तो देवताओं के भी सेनापति हैं, हर प्रकार से सक्षम हैं, इसलिए शीघ्र ही वे सभी देवताओं से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पहुंचे। श्री गणेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान हैं। उन्होंने माता पार्वती तथा देवाधिदेव महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी सात परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वे भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। यहाँ आकर उन्होंने कार्तिकेय भगवान को दिव्य ज्ञान दिया। तब कार्तिकेय भगवान के मन की सब शंकाएं दूर हो गईं और उन्होंने अपने माँ बाबा से उसी स्थान पर उनके साथ रहने को कहा। तब भगवान शिव और माँ पार्वती उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए और अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ रहने लगे। मल्लिका अर्थात माँ पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव, इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति के सम्मिलित रूप में वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसीलिए इस स्थान को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कहते हैं इस स्थान पर हर मनोकामना सिद्ध होती है। यहाँ दर्शन करने वाले के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं होती और उसके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है हमारी करुणामयी माता रानी की। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में अति प्राचीन श्री गिरी पहाड़ी पर पाताल गंगा नाम से प्रसिद्ध पवित्र कृष्णा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है श्री शैलम शक्तिपीठ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये स्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से दक्षिण दिशा में लगभग 232 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर सड़क के साथ साथ बहती नदी, बड़े बड़े पहाड़, गहरी घाटियां, जगह जगह बहते झरने आदि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए श्रद्धालु इस स्थान तक पहुंचते हैं। ये मंदिर दक्षिण स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। ये एक विशाल दुर्ग की तरह है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। ये 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रमर अंबिका के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 अंगुल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरभद्र, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर आदि बने हुए हैं। इस मंदिर में खम्बे, मंडप और झरने आदि बनाए गए हैं। मंदिरों की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। 1520 ईसा के आसपास निर्मित 3244 फीट की दीवार के हर पत्थर का वजन 1 टन से अधिक है, जिस पर हिंदू पौराणिक दृश्यों की बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं का योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास 2री शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रलयवम रेड्डी ने पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडप तथा दक्षिण गोपुरम का निर्माण कराया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राज गोपुरम का निर्माण करवाया। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला का भी निर्माण करवाया था। आइए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ सामान्य दर्शन के लिए पुरुषों व महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। अभिषेक व अन्य पूजा करने के लिए पुरुषों को केवल धोती या लुंगी पहनकर और ऊपर के शरीर में बिना वस्त्र पहने प्रवेश करना आवश्यक है और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के पास पहुंचने पर आपको अलग अलग दर्शनों की लाइन दिखती है। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का 150 रुपए का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम बने हुए हैं, जहां आप मोबाइल, कैमरा तथा अन्य सामान जमा कर सकते हैं। इन सब कार्यों से फ्री होकर आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद इधर उधर की बातें ना करें, मन में माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर सबसे पहले आप नंदी मंडप में पहुंचेंगे। वहां विशाल, अद्भुत, सुंदर नंदी जी के दर्शन करते हैं। इस स्थान की ऊर्जा को महसूस करें। मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव के वाहन नंदी बाबा ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। अब आप मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच जाएंगे। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। भगवान के इस रूप को देखकर आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग रूप को अपने हृदय में विराजमान करके आप मंदिर से बाहर आ जाइए। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही आदि शक्ति देवी श्रीशैल या भ्रमर अंबिका का मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में देवी की ब्रह्मानी रूप में पूजा की जाती है। यहाँ उनकी ही प्रतिमा स्थापित है। देवी की मूर्ति की 8 भुजाएं हैं और उन्होंने रेशम की साड़ी पहनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर संत अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपा मुद्रा की भी मूर्ति है। गर्भगृह के सामने एक श्री यंत्र भी है। माता का रूप बहुत ही मनमोहक है। उनकी आंखों से करुणा बह रही है। माता का आसन स्वर्ण का है। सोने, चांदी, हीरे के आभूषण उन पर खुद कोपा इतरा रहे हैं और खूब चमक रहे हैं। माँ ने साड़ी पहनी है, सोने का छत्र चढ़ा हुआ है। माता के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह में स्थापित श्री यंत्र के दर्शन और सिंदूर से उसका पूजन अवश्य करें। इसके बाद श्री सिद्ध गणेश मंदिर, वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर आदि के दर्शन करें और विशाल प्रांगण में बनी सुंदर मनमोहक मूर्तियों का आनंद लें। कहते हैं कि इसी स्थान पर ऋषि भृंगी को उनका तीसरा पैर भी प्राप्त हुआ था। उनकी तीन पैरों वाली मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। इसके बाद शाम को 6 बजे से 10 बजे तक खुलता है। इस मंदिर में आरती प्रातः 5:15 बजे से 6:30 बजे तक होती है। संध्या आरती शाम को 5:20 से 6 बजे तक होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू का प्रसाद अर्पित किया जाता है। यहाँ माता को शाक चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर नवरात्रि, शिवरात्रि और श्रावण के महीने में उत्सव मनाए जाते हैं। मंदिर और विग्रहों को दिव्य रूप से सजाया जाता है। ये मंदिर फूलों की खुशबू और एक दिव्य गंध से महकता रहता है। श्रीशैलम में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको श्रीशैलम जाने के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा आप 5 से 7 घंटों में मल्लिकार्जुन पहुँच सकते हैं। श्रीशैलम मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन कम्बम है, जो श्रीशैलम से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रुकने के लिए श्रीशैलम मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित धर्मशालाएं तथा विभिन्न कॉटेज और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। श्रीशैलम के आसपास अन्य अति सुंदर दर्शनीय स्थलों का आनंद लेना ना भूलें, जैसे पाताल गंगा। यहाँ का रोपवे बहुत प्रसिद्ध है। पालधारा, पंचधारा, इस जगह पर शंकराचार्य जी ने तपस्या और प्रसिद्ध शिवानंद लहरी की रचना की थी। यहाँ पर साल भर पहाड़ियों से जल की निरंतर धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। आगे चलकर ये धारा कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस धारा के जल में कई प्रकार के औषधीय गुण हैं, इसलिए लोग इसका जल अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए ले जाते हैं। श्रीशैलम डैम भी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। पाताल गंगा पहुंचने के बाद आप बोट से नदी और डैम की सैर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे छत्तीसगढ़ और दर्शन करेंगे मैहर शक्तिपीठ के, जहां माँ के गले का हार गिरा था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें HTSmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल। HT Smartcast.